धवला पुस्तक पंद्रहवी लेक्चर नंबर 16।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभसाहुं सयलिन्दविन्दवन्द्य महिनन्द्य भवपौमवणसण्डम्
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वार उनकी चर्चा है, उसमें से अभी हम उपक्रम अनुयोग द्वार देखते हुए पंद्रहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। 68। देखो, ये उपक्रम में बंद के द्वितीय समय से लेकर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनकी चर्चा है। उसमें पहले उन्होंने बंधन उपक्रम, वो तो उसकी केवल चर्चा की है। उसके बाद उदीर्णा की प्रकरण अपना चल रहा है। तो उदीर्णा में हमने देखा था कि मूल प्रकृतियों पर हमने एक एक प्रकृति की भी बात देखी थी और प्रकृति स्थानों की भी बात देखी। अब उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही थी, तो उत्तर प्रकृतियों में उसके उदीरक कौन है कौन नहीं है उसकी चर्चा हुई। उसके बाद उसका काल, एक जीव की अपेक्षा काल, लगातार उदीर्णा होने का काल। कोई कर्म ऐसे है कि अनादि से बनते हैं और बारहवें गुणस्थान के अंत तक तो बनते नहीं। मुझे उदीर्णा की बात चल रही है, उदय उदीर्णा की। तो उसकी तो उदीर्णा कैसे, किसी जीव को तो अनादि अनंत है, अभव्यों को, और भव्य जो श्रेणी चढ़ेंगे उनके लिए अनादि शांत, वो भी क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले, तो उनके लिए काल कैसा होगा, तो अनादि शांत या अनादि अनंत होगा। काल की बात, अनादि शांत वाली ज्ञानावरण है, अंतराय है, दर्शनावरण की 4 और 2 उसकी बात अभी हमने देखेगी। ऐसे अलग अलग हमने प्रकृतियों में काल देखा था, अभी हमको क्या देखना है, अंतर देखना है। यानी उसकी उदीर्णा कर रहा था, फिर उदीर्णा रुक गई और फिर वापिस करने लगा, तो उसका अंतर कहलाएगा। जैसे सातावेदनी की उदीर्णा कर रहा, अब असाता का उदय उदीर्णा चालू हो जाएगा तो इसमें अंतर पड़ जाएगा और वापस ये करने लगेगा। तो हमने देखा था एक समय से लेकर, वैसे तो अंतर्मूर्त होता है, परंतु किसी का असाता का लगातार 33 सागर है, अंतर की बात है 6 मास नहीं लेना, साता का ही अंतर 6 मास नहीं हो सकता, 6 मास उसका काल है। असाता का जो काल है वो साता के लिए अंतर होगा, तो साता का अंतर साधिक 33 सागर होगा, क्योंकि किसी जीव को असाता का लगातार उदय 33 सागर तक और 2 अंतर्मूर्त बढ़ाना और भी हो सकता है, परंतु यूजुअली एवरेज तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है। पर एक भी जीव का होगा तो वो तो कहेंगे ना, तो ये उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अंतर इतना है, और असाता के लिए एक समय से लेकर 6 महीना। यानी अंतर कैसे सोचना है उसकी बात है। अभी हम ये अंतर की बात फिर दोबारा देखने वाले, पेज नंबर 68। देखो अंतर का अर्थ क्या होता है, अंतर का अर्थ वो कर रहा था, अब वो रुक गए, उदीर्णा की बात है अपनी, उदीर्णा का अंतर की बात है। उदीर्णा कब तक चलेगी, जहां उदय है उदीर्णा चल रही है। अंतर कब पड़ेगा कि देखो, कोई प्रतिपक्ष वाले का उदय होगा तो अंतर पड़ सकता है, एक बात, या जहां उदीर्णा रुकती है ऐसे कोई है ना, जैसे आयु की उदीर्णा अंतर एक आवली पहले रुकती है और फिर दोबारा चालू हो जाती है आवली के पश्चात, तो इसके लिए हम उसको अंतर में ले सकते हैं। या आयु की उदीर्णा कब रुकती है, छठे के ऊपर रुकती है, और फिर नीचे आता है छठे में फिर उदीरना शुरू होती है, उसको हम अंतर कह सकते हैं। कार्य ने उस पर्टिकुलर कर्म की उदीरना नहीं हो रही, इतना उस प्रकृति की।
हाँ
देखो, केवल रुक गई का अंतर नहीं कहेंगे, वापस चालू होना चाहिए। उसको तो हमने, क्योंकि देखो क्या है, जैसे ज्ञानावरण की वो रुक गई, कहाँ रुक गई, बारहवें के अंत में। वापस चालू होगी क्या? नहीं होगी। तो अंतर शुरू हुआ था पर अंतर समाप्त नहीं हुआ, वो कायम के लिए अभी उदीरना रुक ही गई है। रुक के फिर दोबारा चालू हो जाए तो उसको कहेंगे अंतर। जैसे हमने गुणस्थानों का अंतर देखा था, मिथ्या तो गुणस्थानों का अंतर कब कहेंगे? मिथ्या तो में था जीव, समय दृष्टि हुआ और वापस मिथ्या तो में आया एक अंतर मुहूर्त में। तो मिथ्या तो का अंतर कितना होगा? एक अंतर मुहूर्त। और मिथ्या तो का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? अर्ध पुद्गल तो सम्यक, वो सम्यक्तव का अंतर है, मिथ्यात्व का काल है। मिथ्यात्व का अंतर में क्या लेना है? देखो उसको छासर सागर तो सम्यक्तव में रखा, फिर तीसरे में लाया, फिर छासर सागर, और फिर लाना है वापस मिथ्यात्व में, क्षायिक नहीं कराना है। तो फिर और एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में लाया उसको, ये मिथ्यात्व का अंतर होगा, सम्यक्तव का काल होगा। सम्यक तो का या पहले गुणस्थान में समय मिथ्या, ऊपर के गुणस्थानों में रहने का काल, इस तरह से हम सोच सकते। मैक्सिमम दो छासठ सागर, यानी कुछ कम दो छासठ सागर, बिल्कुल दो छासठ सागर का अर्थ है 132 लेना। अरे पहला छासठ सागर पूरा लेना, दूसरा छासठ सागर एक अंतर्मुर्त कम करना, क्योंकि पूरा हो जाए तो क्षायिक हो जावे, यानी पूरा छासठ सागर बन नहीं सकता। या तो तीसरे में आए तो कुछ कम छासठ हो जाएगा, या क्योंकि जो पूरा छासठ सागर गिनते हैं वो कृतकृत्य वेदक के काल सहित पूरा छासठ सागर गिनते हैं। हाँ अभी यानी अंतर क्या है उसको समझ में आई बात, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये बात जीव, एक जीव की अपेक्षा की बात चल रही है, नाना जीवन की अपेक्षा तो अंतर नहीं होगे, क्योंकि कोई ना कोई उदीर्ण करने वाले होगे उसका। देखो एक जीव की अपेक्षा अंतर, ऐसी कोई प्रकृति होगी कि नाना जीवन की अपेक्षा उसका उदीरक नहीं है? आहारक की यानी कोई उसमें उदीरक नहीं, ऐसा हो सकता है? अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो उदीर्णा आहारक वाले जीव तो हमेशा ही पाए जाएंगे, नाना जीवन की अपेक्षा बात थी। तो उसकी उदीर्णा करने वाले कुछ न कुछ होंगे, परंतु किसी ने आहारक शरीर बनाया ही नहीं, ऐसा होता है ना, हमने देखा था। वर्ष पृथक्त्व के अंतर पड़ सकता है, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक एक प्रकृति लेके बात होने वाली है।
अभी आपने बताया कि आहारक की उदीर्णा नहीं करने वाले जीव होंगे, परंतु हम देखते उदीर्णा कौन करता है? जो बांधता है वही उदीर्णा बंद कर रहा है।
बांधने वाला प्रत्येक करेगा ही, ऐसा नहीं। जिसका उदय है, जो आहारक शरीर बनाएंगे उस काल में उसका उदय उदीर्णा होगी। और आहारक शरीर किसी ने नहीं बनाया, ऐसे वर्ष पृथक्तोत्तर हो सकता है
वो ख्याल में है।
हाँ,
तभी तो नहीं बांध रहा है तो फिर उदीर्ण का सवाल ही नहीं है, ऐसा मुझे कहना है।
कौन नहीं बांध रहा है?
आपने बताया ना,
बंद की बात ही नहीं है, उदय की बात है। आहारक का बांधने वाले हमेशा ही होंगे जीव।
हाँ,
कोई ना कोई जीव हमेशा ही होगा।
उदीर्ण के लिए उदय की आवश्यकता है,
बिल्कुल।
तो आपका कहना है कि उदय करने वाले
उसमें अंतर पड़ सकता है।
हाँ, मतलब अभी आपने बताया 3.5
वर्ष पृथक्त।
अच्छा, हाँ। वर्ष पृथक लो,
उसमें अंतर पड़ेगा। यानी किसी भी मुनिराज ने आहारक शरीर नहीं बनाया, ये कुछ साल तक हो सकता है।
आहारक
ना 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 आहारक आहारक, आहारक हाँ। आहारक प्रकृतियों की बात चल रही है, उदीर्णा किसकी होती है? आहारक और आहारक अंगोपांग की। नहीं समझे?
समझ में मैं बंद को देख
रहा था। बंद तो नाना जीवन की अपेक्षा बंद निरंतर है, यानी हमेशा कोई ना कोई जो मुनिराज है वो तो हमेशा ही आहारक का बंद, क्योंकि एक बार जिसने बंद शुरू किया हर बार छठे से सातवें में जाएगा तो बंद करेगा ही करेगा, ये नियम है। आहारक बांधने वाले जब जब सातवें में होंगे तो बंद करते ही रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे मुनिराज होंगे जो आहारक का बंद कर रहे हैं, पर बंद किया और प्रकृति सत्ता में है इसलिए आहारक शरीर बनाएंगे ऐसा नहीं है। परंतु तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नियम से होगा, आहारक का ऐसा नियम नहीं है। आहारक द्विग बांधा इसलिए उसके उदय होना चाहिए और आहारक शरीर बनाना चाहिए कोई जरूरी नहीं है, वो बांधी प्रकृति ऐसी पड़ी रहेगी सत्ता में और जाके फिर कहाँ नाश हो जाएगा उसका सत्व, कहा न चौदवे के उपांत समय में पड़ी रहेगी सत्ता में। अभी आगे देखते, देखो फिर से मैं पढ़ती हूँ यहाँ से, एक जीव की अपेक्षा अंतर, कल हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था ना 68 पेज पर, तीसरी लाइन से पढ़ती हूँ। पांच ज्ञानावरणिया, हम पढ़ना शुरू करते तो स्ट्राइक होना चाहिए क्या कहने वाले हैं, तो नाना जीवों की अपेक्षा इसका अंतर होगा क्या कभी? तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें के मावली पूर्व तक की सभी जीव उसका उसकी उदीर्णा कर रहे हैं। चार दर्शनावरणिया, तेजस कारमान शरीर, अब ये सब आगे की जो ध्रुवोदयी प्रकृति है ये सब वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु स्थिर स्थिर शुभ शुभ निर्माण और पांच अंतर, इनकी उदीर्णा का अंतर नहीं होता क्योंकि ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा और प्रचला की उदीर्णा का अंतर काल, जघन्य व उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र। अभी यहां हम नाना जीवों की अपेक्षा नहीं बात करें, अभी एक जीव की अपेक्षा बात करना है। पहले मैंने वो हम वो कोई ना कोई होगी हम नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे थे, अभी फिर दोबारा सोचो एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा पांच ज्ञानावरणीय का जो है उदीर्णा का अंतर नहीं होगा, यानी अंतर कब घटित होता है? वापस उदीर्णा करेंगे तो, एक बार इनकी उदीर्णा रुक गई वापस इनकी उदीर्णा होने वाली नहीं है। ये सब जो तेजस कारमान वर्ण गंध रस स्पर्श ये सब इनकी उदीर्णा कहाँ रुकती है? देखो ज्ञानावरण दर्शनावरण पांच अंतराय की बारहवें में, बारहवें के अंत में, और बाकी जो है वो तेरहवें के अंत में, क्योंकि तेरहवें वाले को उसका उदय उदीर्णा है। चौदहवें में किसी कर्म की उदीर्णा नहीं होती, हाँ, और इनका उदय भी वहां रुक जाता है, इनकी उदीर्णा का अंतर नहीं होता क्योंकि ये ध्रुवोदय प्रकृतियां हैं। निद्रा और प्रचला की उदीर्णा का अंतरकाल, जघन्य वो उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र है, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसका उदय होगा ये इससे सिद्ध होता है ना, उदीर्णा का अंतर घटित करे। जघन्य छोटे अंतर्मूर्त में उसका फिर उदय शुरू होगा या बड़े अंतर्मूर्त में होगा, पर अंतर्मूर्त से ज्यादा उसके उदीर्णा का अंतर नहीं होगा एक जीव की अपेक्षा। अब निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यांग वृद्धि का वह अंतरकाल, यानी वो हरेक को उसका उदय अंतर्मूर्त में होगा ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा इसका उदय उदीर्णा किसके नहीं होते? देवों के नहीं होते, नारकियों के नहीं होती, अपर्याप्त अवस्था में जब इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं तब तक नहीं होती, भूभूमि वालों को नहीं होती है। तो ये सब कंसिडर करके हमको सोचना है। तो देखो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यांग वृद्धि का वह अंतरकाल, जघन्य से अंतर्मूर्त, जैसे निद्रा प्रचला में जघन्य से अंतर्मूर्त देखा था वैसे यहाँ पर भी जैसे सो गए रात में स्त्यांग वृद्धि का उदय है, वो स्त्यांग वृद्धि से निद्रा निद्रा हो जाए वापस स्त्यांग वृद्धि हो जाए, स्त्यांग वृद्धि से अन्य कोई भी निद्रा हो जाए वापस उस निद्रा पर आ जाए, तो अंतर्मूर्त का अंतर जघन्य होगा एक बात, और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। हमने देखा ना देव और नारकियों में तो इसका है ही नहीं है, और वापस लौटने पर अपर्याप्त अवस्था में भी उसका उदय उदीर्णा नहीं है, तो उसकी बात लेना यहाँ पर। साता वेदिनी की उदीर्णा का अंतरकाल अभी हमने देखा था, जघन्य से एक समय उदीर्णा का अंतर, यानी साता का उदय चल रहा था और फिर वो साता का शुरू हुआ, अंतर पड़ा और फिर वहां जाके मरकर अन्यत्र गया, फिर साता का शुरू हुआ, इस तरह से हो सकता है। और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम, इसके अभी अभी हमने चर्चा की थी। जो असाता का उदीर्णा का काल है वो साता के उदीर्णा का अंतर लिया। गति के अनुवाद से, यानी जब गति एक गति की अपेक्षा बात करेंगे तो साता वेदिनी की उदीर्णा का अंतर काल जघन्य व उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही है। यानी ऊपर जो एक समय बताया है वो गति चेंज होने की अपेक्षा से उन्होंने बताया था। असाता वेदिनी का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट 6 मास प्रमाण है। और मनुष्य गति में असाता की, हाँ, एक समय नहीं लिया क्योंकि उसी गति में कायम रखते हुए एक समय का अंतर नहीं होगा, ये कहना चाहते। हाँ, उसकी उदीर्णा वैसे नहीं होगी एक समय के। हाँ, क्योंकि मरण की अपेक्षा वहां एक समय उन्होंने घटित किया ऐसा लगता है, इसलिए अभी असाता में उन्होंने मनुष्य गति में लिया। एक ही गति में रहते हुए भी असाता की उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त प्रमाण है। यानी इसमें हम ऐसा घटित कर सकते हैं, यानी वो सातवें में गया तो ना साता की उदीर्णा है ना असाता की है, फिर छठे में आया तो एक समय के लिए अरे मरण की अपेक्षा लगा ही नहीं, एक ही गति में रखना है उसको, छठे सातवें की अपेक्षा लेना है, उसका उदय चेंज हो गया एक समय में, ऐसा था कि उदीर्णा करके साथ। अच्छा, अंतर की बात है। वापस करना पड़ेगा ना। हाँ, वापस करना है,
खाली मनुष्य गति की बात है।
मनुष्य गति में ऐसा था कि उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्गुण प्रमाण है। हाँ, साता का एक समय हो सकता है, उदय तो हो सकता है, पर अन्य गति में क्यों नहीं लिया फिर? नहीं नहीं नहीं, गुणस्थान की अपेक्षा बात नहीं लगेगी क्योंकि सातवें में जब तक है पूरा ही उसका रुक जाएगा ना।
मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होने की बात है,
फिर तिर्यंच से तिर्यंच में भी हो सकता है ना।
तिर्यंच के साथ भी पवंतर में दोनों के दोनों में से एक का भी उदय हो सकता है।
काल जरा देख लो, एक युग की अपेक्षा साता असाता का काल, काल तो ठीक है वहां तो छठे सातवें में काल घटित होता है, परंतु अंतर कैसे घटित करेंगे? हाँ, उसी में अपने उदीर्णा का काल एक समय लिया है उन्होंने 62 पेज पर वो अंतर घटित करना था। असाता वेदने का उदीर्णा का काल जगने से एक समय,
ये तो साता से असाता हो गया और जो
उदीर्णा, नहीं नहीं वो तो उस पे भाव बदल गए उस अपेक्षा से। 62 में मैं देख रही हूँ, उसमें साता का भी उदीर्णा का जघन्य से एक समय और असाता का भी जघन्य से एक समय लिया, परंतु उसमें गतियों में कुछ बताया क्या? यानी जो जिसको हम कहेंगे ना आदेश में, आदेश का कथन जानकर कथन करना चाहिए, इतना ही उन्होंने बताया था, उन्होंने उसकी बात अलग से नहीं बताई है, यानी मार्गणाओं में नहीं बताई। मनुष्य गति में असाता की उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय, यानी जैसे आप कहते हैं गति से गति में जाने वाले की बात होगी ऐसा लगता है, फिर तिर्यंचों में क्यों नहीं लिया? और साता का नहीं लिया, असाता का लिया। मैंने वापस असाता में आने वाला जीव लिया है। नहीं, घटित नहीं होता है, वो घटित नहीं हो रहा है। और अकेले असाता का क्यों लिया, साता का क्यों नहीं लिया? पन गति बदल गई ना, अंतर की, अंतर की बात है, अंतर की बात। साता को क्यों नहीं लिया, असाता को ही क्यों लिया, असाता का अंतर ही क्यों लिया? यानी असाता का अंतर ने फिर पहले समय में फिर असाता होना चाहिए। अगर वो सातवें में मरता है तो देव में जाएगा, वहां तो शुरुआत में साता का उदय होगा। मनुष्य गति में रखना है।
यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक समय के लिए उदय भी लेना पड़ेगा ना।
उदय है तभी उदयना
होगा। साता का अंतर लिया है तो साता का एक समय के लिए अंतर।
उदय भी नहीं, उदीर्णा, देखो ऊपर के गुणस्थानों में उदय भी नहीं और उदीर्णा भी नहीं। उदय है, उदीर्णा नहीं है। उदय है, उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा नहीं है, पर उदीर्णा नहीं है और उदीर्णा का अंतर कैसे का? पूरे सातवें में रहेगा और नीचे आएगा तो अंतर मूर्त का अंतर पड़ेगा ना। होने दो ना, फिर असाता हुआ तो भी उदीर्णा तो है ही नहीं ना। उदय साता का रहे, असाता का रहे, उदीर्णा तो रुकी गई थी, छठे में ही रुकी है। यानी इसमें से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में एक समय के लिए उसमें साता हो जाता है। ये ख्याल में नहीं आया, क्वेश्चन मार्क लग करके रखते हैं 68 पेज के लिए। अभी आगे बढ़ते, कल यहीं तक आके रुके थे ना, शायद आगे उसके बारे में कोई चर्चा होगी तो ख्याल में आ जाएगा। अभी अभी तो शुरू हुआ है ना। देखो, मिथ्यात्व का जघन्य उदीर्णा अंतरकाल, अंतर की बात चल रही है। मिथ्यात्व का अंतर कब होगा? जब सम्यक्त्व में रहेगा तब। अंतर्मूर्त यानी अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में आया और उदीर्णा करने लगा है। और उत्कृष्ट साधिक 266 सागरोपम प्रमाण है। हाँ, यहाँ पर साधिक, अच्छा अच्छा, साधिक दिया लिखा है तो यहाँ कोई रेफरेंस लिखा है मैंने 201 पेज का, पता नहीं क्या है वहां पर, लास्ट टाइम लिख के रखा था। के लिए अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा के अंतर की प्रवृत्ति, प्रकृति उदीर्णा के अंतर जैसी, इन्हें प्रकृति उदीर्णा में जो अंतर है वही अनुत्कृष्ट उदीर्णा के लिए। वो वहां का रेफरेंस यहाँ है। हाँ, वहां पे 68 लिया और यहाँ पे ये 201 लिखा है। और वहां उसकी बात आए कि नहीं देखते हैं जरा। अभी हमको प्रश्न किसका था, मनुष्य गति में वो जघन्य और उत्कृष्ट का अंतर है, उसमें हमको वो बात नहीं लिया। कैसे बंद की बात नहीं है, गति में कैसे उन्होंने घटित किया पता नहीं लग रहा है। उदीर्ण हो रही थी और फिर अंतर्घटित करना है। वो साधिक 266 सागरोपम वो ये रेफरेंस वहाँ के लिए है, 201 के लिए है। वहाँ अनुभाग उदीर्ण की बात है, वहाँ 1, 2, 3 चौथी लाइन में है अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण का अंतर, प्रकृति उदीर्ण के अंतर जैसे। ये हमारी प्रकृति उदीर्ण का अंतर बताया उन्होंने, प्रकृति उदीर्ण का अंतर उन्होंने साधिक 266 सागरोपम प्रमाण बताया है।
नहीं,
ऐसा लेना है 266 सागर प्रमाण तो वेदक सम्यक्तों का काल है, तो उपशम सम्यक्तों को ऐड करो ना उसमें। उपशम सम्यक्तों का काल भी उसमें ऐड कर दो तो साधिक हो जाएगा, क्योंकि उपशम सम्यक्तो प्राप्त हुआ ना तो उसमें आवली पहले उसके मिथ्यात्व की उदीर्ण रुक गई थी, जब प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति बनाई थी तो पहले स्थिति में 2 आवली बाकी थी, फिर 1 आवली बाकी रही तो उदीर्ण रुक गई, यानी वो आवली प्लस प्रथम उपशम का 1 अंतर्मूर्त और प्लस 266 सागर उपशम, यानी उपशम प्लस वेदक। हाँ, तीसरा गुणस्थान में 266 सागर में ही आता है, यानी उपशम प्लस वेदक
सम्यक।
उपशम सम्यक तो साधिक नहीं, नहीं, क्षायिक होने के सवाल नहीं है। क्षायिक हो देखो, पहले 66 सागर में सम्यक मिथ्या तो मिलाया, दूसरे 66 सागर में मिथ्या तो मिलाया उसको, हाँ, परंतु यहाँ उपशम वो कम हुआ, पर यहाँ उपशम का काल बढ़ाना, आवली प्लस उपशम का काल। हाँ, तो साधिक में चला जाएगा। देखो, सम्यक मिथ्या तो बीच में ही लिया है, बीच वाले में लिया, यानी पहले 66 सागर में सम्यक मिथ्यात्व को लिया, तो वो पूरा 66 सागर हो गया। दूसरा 66 सागर में अंतर्मूर्त कम करना है, क्योंकि दूसरा 66 सागर पूरा तभी कहेंगे जब कृतकृत्य वेदक हो जाएगा, हाँ, तो वो नहीं करना है, तो उसको पहले मिथ्यात्व में लाना है। पर उसने वेदक के पहले औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया था, वो काल इसमें ऐड कर दो, के पहले, हाँ, यानी उपशम पूर्वक वो वेदक हुआ था, ऐसा जीव लेना। जब पहला 66 सागर लिया, उसके वो 66 सागर ने वेदक का काल शुरू हुआ, पर वेदक सम्यक तो मिथ्या तो में से वेदक नहीं हुआ है वो, पहले उसने मिथ्या दृष्टि था, उपशम सम्यक तो प्राप्त किया और वो उपशम सम्यक दृष्टि वेदक हो गया, तब उसके 66 सागर चालू हो गया उसका, यानी उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त और फिर वो आवली 1 प्लस आवली उसमें ऐड कर दे, उसके पूर्व में ऐड करना, बाद में कम किया पहले ऐड करना, तो सब मिलकर साधिक 266 सागर, बीच में वो सम्यक मिथ्यात्व हुआ, यानी 1 66 सागर प्लस अंतर्मूर्त हो गया ना, और दूसरे 66 सागर में माइनस करना था अंतर्मुहूर्त, उसके बदले ये पहला ऑप्शन एक का काल बड़ा होगा। आगे बढ़े मनीषा बहन, कुछ समझ में आया? हाँ, देखो अभी हम आगे बढ़ते। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का वह अंतर, सम्यक्त्व प्रकृति का अंतर, सम्यक प्रकृति का उदय उदीर्ण कहाँ है? 4 से लेकर 7 तक है। वो जो मिथ्यात्व में आया या तीसरे में गया तो अंतर पड़ा, और फिर वापस वो वेदक सम्यक्त्व में आया तो अंतर समाप्त हुआ, तो उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा। और उत्कर्ष से कुछ कम उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी तीसरे या चौथे तीसरे के लिए भी यही बात है कि पहले भव में फर्स्ट टाइम किया था और फिर लास्ट में मुख जाने के पहले वाला जो उस भव में उसने किया, तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका अंतर हुआ, सम्यक प्रकृति के उदीर्णा का और सम्यक मिथ्यात्व के उदीर्णा का। अनंतानुबंधी कषायों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट साधिक 2 66 सागरोपम काल प्रमाण है। अब अनंतानुबंधी का घटित करेंगे आप? सम्यक्त्व में रखना है छोटे 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 काल के लिए, या औषमिक सम्यक्त्व बनाकर 6 अवली पहले उसको साधन में लाना, तब भी हो जाएगा उसका। अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है ना, उसके उदीर्णा कैसी होगी? उसको दूसरे या पहले में लाना ही है। पता नहीं, क्योंकि क्या है कि कल बात बताई थी कि मिथ्यात्व का जघन्य काल, तीसरे का जघन्य काल और चौथे का जघन्य काल सब समान है, ये बात आई थी कल, बात आई थी काल में आई थी। उदीर्णा का काल निकालो, यानी मिथ्यात्व का जघन्य उदीर्णा का काल, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का समान है, ये बात उन्होंने लिखी थी। देखो ये उदीर्णा का, उदीर्णा का काल जहाँ लिया था ना 61 से शुरू हुआ था 62 पर, देखो देखो नीचे बीच में ना छठी लाइन, सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व इन तीन प्रकृतियों का जघन्य उदीर्णा काल समान है। यानी जितने छोटे काल में सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आकर फिर सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उतने ही कम काल में नीचे के गुणस्थानों से सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आ सकता है। नहीं नहीं, ये तीन के लिए मैंने बताया, अभी अनंतानुबंधी के लिए भी वही होगा ना, क्योंकि पहले से चौथे में गया और वापस चौथे नीचे आ गया। पर अनंतानुबंधी जो उसका छोटा हो सकता, साधन की अपेक्षा छोटा होता है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वेदक का मिनिमम काल और औषमिक का मिनिमम काल इसकी कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। हाँ, कहीं आती है बात उसके दो अल्प भूतों की कंपैरिजन में, तो हम आगे देखेंगे। यहाँ तो केवल अंतर्मूर्त इतना ही लेना है कि जब तक वो सम्यक्त्व में रहा तो उदीर्णा का अंतर हुआ। जघन्य अंतर अंतर उत्कृष्ट साधिक 2 66 सागरोपम प्रमाण काल है, जैसे अभी हमने ऊपर घटित किया था वैसे उसका ले लेना, यानी औपचमिक सम्यक तो 2 66 सागर ऐसा लेना। अप्रत्याख्यान कषायों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। अब अप्रत्याख्यान की उदीर्णा का अंतर कब होगा? देखो आवली प्लस औपशमिक सम्यक्त्व प्लस, हाँ वही सेम सेम मिथ्यात्व जैसा ही है। देखो अप्रत्याख्यान में क्या लेना है, उसका उदय उदीर्णा कहाँ तक है? चौथे तक है, यानी वो जीव चौथे से ऊपर के गुणस्थानों में गया और फिर वापस नीचे आया अंतर्मूर्त में, तो अप्रत्याख्यान कषायों का जगन्यंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि, क्योंकि मनुष्य तिर्यंच का एक ही भव और उसी में भी उसने पहले में पहले चौथे के पहले से पांचों में जाओ या चौथे से पांचों में जाओ कोई बात नहीं है, उदीर्णा रुक गई और नीचे आया फिर उदीर्णा चालू हो गई। तो अंतर्मूर्त लेना आयु के क्या मरकर ऊपर गया इस तरह से, पर वो पांचवे में जाते ही एक इतने छोटे अंतर्मूर्त में उसका मरण नहीं हुआ।
मरण हो गया ऊपर के गुणस्थान में और पर्वों में चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में गया तो उदीरना चालू हो गई।
अरे पर उदीरना रुकी कब? पांचवे में गया तब उदीरना रुकी, तो पांचवे में अंतर्मूर्त तो रहेगा ना, तो आप मरण की अपेक्षा क्यों लगाते हैं? उत्कृष्ट अंतर के लिए, हाँ उत्कृष्ट के मैं जगन्य की सोच रही थी, आप उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, बराबर है। कुछ कम पूर्व कोटि जो लिया है ना, देखो यानी आठवें साल के बाद वो पांचवे में गया और संयमी हुए, हमें उससे लेना देना नहीं, तो उसके उदीर्णा का अंतर चालू हो गया और फिर मरकर देव में गए तो उदीर्णा चालू हो गई, चौथे में गया ना, तिर्यंच की अपेक्षा वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसने कर दिया, वो ये हो सकता है बराबर, वो संज्वल संज्वलन सॉरी समूर्छन तिर्यंचों में हम देखते हैं। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अंतर का कथन करना चाहिए, इसके लिए तो संयमी बना, हाँ यानी उसका उत्कृष्ट अंतर घटित करना, अर्लीएस्ट उसने पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया और मरण तक पांचवा रहा, ख्याल में आई बात? तो तिर्यंच में उसका काल बड़ा हो जाएगा यानी अंतर बड़ा हो जाएगा। समूर्छन तिर्यंचों में अंतर्मूर्त में पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया है, और वो समूर्छन तिर्यंच भी एक पूर्व कोटि वाला
तो देव में उत्पन्न हुआ तो
और मरकर देव में गया, तो प्रत्याख्यान की उदीर्णा चालू होगी, क्योंकि चौथा गुण स्थान है। अभी प्रत्याख्यान के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संयम ही रखना, और संयम में ही मरकर देव में गया तो उसका प्रत्याख्यान उनका भी उदीर्णा चालू होगा, 8 साल के बाद वो मनुष्य में लेना उसको संयम ही होकर। संज्वलन क्रोध मान और माया का समूर्छन तिर्यंच को अंतर्मूर्त में हो, पर्याप्ति पूर्ण होने के एक अंतर्मूर्त पश्चात सम्यक हो सकता है, हो सकता है चौथा भी हो सकता है पांचवा भी हो सकता है, डायरेक्ट पांचवा हो सकता है, नहीं वो सादी मिथ्या दृष्टि ऐसा लिया ना, हाँ चौथा करके पांचवा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पांचवा हो सकता है। अब संज्वलन क्रोध मान और माया का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि हमने देखे थे ना कि जो श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला क्रोध के उदय से ही चढ़ रहा था, उसका उदय रुक गया और फिर वापस शुरू हुआ, तो भी अंतर्मूर्त हो जाएगा। जगन्य के लिए
एक समय में
देखो देखो, एक समय में होगा वो लोभ में होगा, क्योंकि देव में पहले समय में लोभ का उदय है, क्रोध मान माया का नहीं है। देवों में क्रोध मा, यहाँ क्रोध में मरा तो देव में लोभ का शुरू हो जाएगा, तो उसका यानी क्रोध में, क्रोध के साथ मरा यानी उसके क्रोध की उदीरना रुक गई, वहाँ लोभ की चालू हो गई, और फिर लोभ से जब क्रोध का नंबर आएगा हाँ तो अंतर्मूर्त होगा उसका। इसलिए क्रोध मान और माया के लिए जगन ने अंतर अंतर्मूर्त लिया। ऐसे भी अपने अपने उदीरना के साथ चढ़ने, उदय के साथ चढ़ने वाला या तो वापस लौट के उसकी उदीरना करेगा या मरकर देव में जाएगा, पर मरकर अगर देव में जाता है तो लोभ की उदीरना चालू हो जाएगी। इसलिए उसका एक समय का अंतर नहीं, यहाँ क्रोध में मरा एक समय के लिए उदीरना रुक गई और फिर वापस क्रोध की ऐसा नहीं होगा उसके लिए। श्रेणी में ही लेना है, परंतु श्रेणी में मरकर भी अगर जाता है तो भी उसके लिए अंतर्मूर्त तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले लोभ का उदय हुआ। देवों में पहले लोभ का उदय उदीरना होती है, ये नियम है उनके। अंतर्मूर्त लिया ना, श्रेणी का ले सकते हैं हम, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि श्रेणी चढ़ते समय उदय रूप का था और वापस नवे भी रुका,
तो समान
नहीं, नहीं।
कैसे समान हुआ?
बदलने की अपेक्षा लेना पड़ेगा,
अन्यत्र संजुलन। देखो नीचे के गुण स्थानों में संज्वलन का उदय उदीर्ण है कि नहीं, तो उसमें एक एक कषाय का अलग अलग सोचो। हाँ, बदलने की अपेक्षा लेना है उसकी। जघन्य में शायद श्रेणी लगता है, उत्कृष्ट में कैसा लेना है मैं आपको बताती हूँ। क्रोध का अंतर, संज्वलन क्रोध का, संज्वलन क्रोध का उदय उदीर्ण तो पहले से लेकर, परंतु वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बदले, यानी क्रोध से मान हुआ फिर माया हुआ फिर लोभ हुआ, इस तरह से लेना है। या क्रोध का उदय यानी उसका उदय चल रहा था उदीर्ण चलते मरकर देव में गया तो पहले लोभ फिर वो क्रोध का नंबर बाद में आया, क्रोध का नंबर यानी वो अंतर्मूर्त हम बढ़ा सकते हैं इसे लगता है। और यहाँ पर भी क्रोध में ही नहीं मरा, क्रोध से मान माया लोभ करके मरा और वहां पर भी लोभ से फिर उल्टा कुछ हुआ, इस तरह से अभी ये तो हम सोच ही सकते हैं। अभी देखो संज्वलन लोभ का जघन्य अंतर एक समय, ये कैसे होगा? दसवें के एक आवली कम थी तब तक तो उसकी उदीरना चल रही थी, उदीरना रुक गई एक समय के लिए और मरकर देव में गए तो लोभ का ही उदय उदीरना चालू हो गई। यानी दसवें गुणस्थान के एक आवली में लास्ट एक एक हाँ जब अंतिम आवली में प्रवेश किया तब एक समय के लिए उदीरना रुकी और मरकर देव हो गया।
आवली के दूसरे समय
एक समय एक आवली उदीरना रुकी
नहीं, उदीरना हुई थी वहां पर, उदीरना रुकी जब मात्र एक आवली बाकी रही नहीं। आवली प्लस एक समय वहां तो उदीरना हुई ना, वो एक निषेक में से रुकी कब? जब आवली रही तब, तो एक समय के लिए रुकी और मर गया। उतरते समय, चढ़ते समय तो चल ही रहा था ना, लास्ट में लोग का ही उदय पर वहां पर भी उदीरना चालू, उसकी उदीरना रुकी कहाँ? उदीरना रुक कर वापस चालू होनी चाहिए, आपने तो शुरू हुई की बात की। यानी देखो देखो दसवें गुणस्थान के अंतिम आवली में प्रवेश किया तो उदीरना रुक गई, रुक गई एक समय के लिए, अनुदीरक रहा, रुकी ना, नहीं रुकी पर वो आवली तक गया नहीं ना, मर गया दूसरे समय में फिर से। देखो यहाँ यहाँ तक उसकी उदीर्णा चल रही थी, दसों गुण स्थान यहाँ समाप्त होता है, तो मान लेते इतने समय बाकी उसके, अभी यहाँ उदीर्णा की, यहाँ उदीर्णा नहीं की और यहाँ मरा, हाँ तो यहाँ मरा और देव में उसकी उदीर्णा चालू हो गई, यहाँ नहीं थी और यहाँ फिर चालू हो गई, यहाँ पर भी थी, यहाँ लोभ की उदीर्णा थी, एक समय के लिए अनुदीरक हुआ, क्यों? क्योंकि दसवें के अंतिम आवली में प्रवेश हुआ और फिर देव मरकर देव हुआ तो वहां लोभ की शुरू हुई। ये बात क्रोध मान माया में नहीं घटित की थी उन्होंने, इन्हें एक समय अनुदीरक होकर मरकर देव में गया। और वहां लोभ की उदीर्णा, यानी कौन से गति में कौन सा कषाय का उदय पहले होता है, उसके हमने पहले नियम पढ़े थे कुछ। यहाँ व्याघात नहीं होगा, व्याघात से क्रोध में आता है वापस, तो व्याघात से होता तो मान माया को भी लेना पड़ेगा, उनको भी लेना चाहिए था, उसको तो नहीं लिया, उसको नहीं लिया है। किसका आता है वो आई थी, वो कर्मकांड में आई होगी, लब्धिसार में नहीं आई होगी।
जब आपने लिया था श्रेणी का कविता,
वो उदय के जो थे ना, उदय के कुट, उस समय लिया होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो गति की अपेक्षा आई, और ये शायद धौला में आया होगा कहीं पर। देखो संज्वलन लोप का हो गया ना, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण है, नहीं इसे भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त उत्कृष्ट सबके लिए। हाँ परिवर्तन में क्रोध का उदय है, मान का है, माया का है, तो अन्य का उदय होने लगा तो इसका अंतर पड़ गया, उत्कृष्ट में लेना कि अन्य में रहा, वो अन्य तीन में रहा। जिस प्रकार साता अभिवेदिनी की बात है, मोहनीय की हो गई, जिस प्रकार साता वेदिनी के अंतर की प्ररूपना की गई है, अच्छा अभी मोहनीय का बाकी है, साता के समान बता रहे, उसी प्रकार से हास्य व रति के अंतर की प्ररूपना करनी चाहिए, और जिस प्रकार असाता वेदिनी के अंतर का कथन किया है उसी प्रकार से अरति और शोक के अंतर का कथन करना चाहिए। जगह अंतर एक समय और साधिक 33 वगैरह को बताया था, गति के अनुवाद से केवल नहीं बताया था उन्होंने। हाँ दोनों के लिए क्या 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 किसकी?
हाँ
वहाँ शुरू हो गए। हाँ तो शायद यहाँ मनुष्य गति में असाता की जो लिखा है ना, वो मनुष्य मरकर देव होने की अपेक्षा होगी वहाँ पर, यानी सातवें में उदीरण नहीं होती थी, छठे में आने पर असाता की हुई और मरकर देव हुआ तो साता की शुरू हुई, इस तरह से उसका लेना पड़ेगा। ये गति की अपेक्षा जो हम गति अनुवाद अलग बात है, और यहाँ मनुष्य गति में वो बात अलग है, यानी वहाँ एक समय कैसे घटित होगा असाता का, सातवें से छठे में आया, सातवें से छठे में असाता की उदीर्णा की एक समय में मरकर देव हो गया।
तो
क्यों नहीं होता? देखो बंध की बात अलग है, उदय की बात अलग है, एक बात। दूसरी बात, कोई मुनिराज है तो उनके असाता का उदय उदीर्ण हो सकता है कि नहीं? छठे असाता का तो उदय उदीर्ण, तो उदय जो है ना वो तो आगे भी है, यहाँ उदीर्ण रुक गई थी। असाता का उदय चल रहा था और वो तो छठे में आ गए, तो असाता का उदय तो था पर उदीर्ण कब हो गई? छठे में। और एक समय में मरकर देह हुआ तो पहले समय में साता की होती, वो तो नियम है। इस तरह से इसको लेना है, यानी वो जो मनुष्य गति में रहते हुए एक समय में किया, फिर उसकी गति बदल गई, इस तरह से उसका लेना है। और ऊपर जो गति का अनुवाद बताया था ना, तो किसी गति में रहते हुए ऐसा है, और यहाँ जो हाँ गति के अनुवाद से वो बात अलग है, और यहाँ मनुष्य गति में कहने से उस गति में एक समय के लिए की फिर गति बदल गई, तो वहां साता का ही शुरू हुआ इस तरह से। वही तो इसे, अरे अरे अंतर क्या है? अंतर करना है, मैं समय घटित कर रही हूँ, मैंने समय घटित किया, सॉरी अंतर घटित करना है। उल्टा सोचो ना, असाता की उदीरणा का अंतर, यानी फिर दोबारा असाता में आना। नहीं नहीं नहीं, साता की होती है। नहीं नहीं, अन्य गति में तो नीचे से गुण स्थानों में जाना पड़ेगा, फिर अटक गए वहीं पर। यानी उसको अंतर के लिए वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, एक समय में उसका साता का उदय मिट गया, यानी कहीं असाता की उदीर्णा करते हुए मनुष्य में आया।
और तो करेगा क्योंकि गति की अपेक्षा उन्होंने अंतर नहीं बता दिया, ये मरण की अपेक्षा कहाँ पे गति हो रहा है?
फिर से घोटाला तो है ही,
क्योंकि गति की अपेक्षा उन्होंने अंतर्भूत बताया, तो अभी ये मरण लेना पड़ेगा, पर मरण में समझ नहीं आ रहा
है। मरकर फिर दोबारा अंतर समाप्त भी होना चाहिए ना, अंतर समाप्त होना चाहिए।
मरण के समय असाता की उदीरणा की गलत कर रहा था, एक समय के लिए साता की थी और पल्लवों में गया तो असाता की उदीरणा, तो एक समय के लिए खाली साता की
फिर नरक में भेजना पड़ेगा।
तो नरक में तो वही अपेक्षा से मेरे को लगता है हो जाएगा, क्योंकि साता पर भरत के समय असाता की उदीरणा कर रहे हैं और एक समय के लिए साता की हो जाएगी।
साता की और फिर नरक में गया असाता,
तो उसका पहले समय
तो होगा। ये तो नियम रूप है, परंतु यहाँ तो उसी में वही जरा कंफ्यूजन है। अभी फिर आते हैं अपने 69 पेज पर। हाँ वो तो मैंने काल घटित किया एक्चुअली, वो लिखा है वो निकाल दो। अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये तो हास्य का जैसे वैसे अरतिशोक का है। भय और जुगुप्सा का अंतर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण है। पहले काल के लिए भी यही प्रश्न पूछा था उन्होंने, एक समय कैसे होता है, अभी अंतर के लिए वही प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय कैसे है? समाधान, भय का वेदक यानी भय का उदय है वो जीव, अंतिम समयवर्ती अपूर्व करण, क्योंकि बाद में तो उसका उदय उदीर्णा मिटने वाली है। यानी उसका उदय कब शुरू हुआ? उदय और उदीर्णा अंतिम समय में ही हुई, और बाद में उसके तो उदय की विच्छित्ति हो गई। नवे में गया तो अनंतर समय में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट होकर उसका अवेदक हुआ, यानी ना उदय है ना उदीर्णा है। पश्चात अनंत समय में मृत्यु को प्राप्त होकर देव हुआ, वह उस समय भय का ही वेदन करता है, क्योंकि उसका वेदक शुरू हुआ तो उसका अंतर्मूर्त उसका भी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार से भय का वेदन करने वाले उक्त जीव के एक समय अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार जुगुप्सा के भी उपर्युक्त एक समय मात्र अंतर का कथन करना चाहिए, क्योंकि उसके उदय के नियम अलग है ना। दोनों का उदय नहीं होगा, या दोनों का होगा, या एक एक का होगा, इसलिए ये बात होती है। और उदय शुरू होता है तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा, परंतु वो नवे में गया इसलिए उदय रुक गया था, पर देव में गया तो उदय शुरू हो जाएगा, भय का ही होगा। ये नियम रूप बताया होगा। ध्रुव बंदी है, पर उदय में उसके चार ऑप्शन है। दोनों का उदय है, या एक एक का उदय है, या दोनों का ही उदय नहीं, और वो पोजीशन अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त रहती
है।
भय का ही, क्योंकि उसका उसका उदय शुरू हुआ था परंतु गुणस्थान के कारण अवेदक हुआ था, इसलिए उसको देव में जाने पर भय का ही होगा। अगर आठवें के अंत में उसका जुगुप्सा का उदय होता तो देव में जाकर जुगुप्सा का ही होता, क्योंकि उसका अंतर्मूर्त वाला काल चल रहा है। ऊपर के गुणस्थान के कारण उदय रुक गया है, एज इट इज उसका भय का एक ही समय शुरू हुआ है, तो अभी उसका काल बाकी है। यानी भय उदय रहेगा ही रहेगा, और अनुदय भी रहेगा, तो वो भी अंतर्मूर्त तक अनुदय ही रहेगा। चार ऑप्शंस है ना, भय का अकेले का उदय, या जुगुप्सा अकेले का उदय, या दोनों का उदय एट ए टाइम, दोनों का नहीं है। तो जो कोई पोजीशन है वो अंतर्मूर्त तक तो रहेगी ही रहेगी, उस अपेक्षा से ये बात बताइए। इस प्रकार से भय का वेदन करने वाले उक्त जीव के एक समय अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार जुगुप्सा के भी उपर्युक्त एक समय मात्र अंतर का कथन करना चाहिए। पुरुष वेद की उदीर्णा का अंतर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब पुरुष वेद की उदीर्णा का अंतर हमने देखा था, श्रेणी में पुरुष वेद का उदय था उपशम श्रेणी में, एक समय के लिए वो तो अवेदी हो गया, अपगत वेदी, देव में जाते पुरुष वेद का उदय शुरू हो गया, इसलिए उसका जघन्य एक समय अंतर होता है। और एक इंद्रियों में चला गया तो नपुसक वेद है, तो इतना लंबा उसमें अंतर पड़ जाएगा। स्त्री और नपुसक वेदों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अब ये जो अंतर्मूर्त है वो श्रेणी से चढ़ते समय स्त्री वेद का या नपुसक वेद का उदीरक था, ऊपर जाके फिर नीचे आया, नवे के स्टार्टिंग में उसका अपगत वेदी हुआ, अपगत वेद से फिर सवेदी हुआ। अब उसको मरकर कहीं भेज नहीं सकते, देव में जाएगा तो पुरुष वेद का उदय चालू होगा, वो नहीं लेना है हमको, अर्लीएस्ट उदय चालू करना है। अगर उसको स्त्री वेदी वाले को नपुसक वेदी बनाकर फिर स्त्री वेदी बनाना है, फिर भी क्षुद्र भव तो करना ही पड़ेगा बीच में, उसके बदले ये तो श्रेणी का काल छोटा होगा। अपगत वेदी होगा एक समय के लिए और मर गया। नहीं, वो नीचे आना पड़ेगा, सवेदी होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो मर गया तो पुरुष वेद में चला जाएगा। स्त्री और नपुंसक वेदों का अंतर है ना, हाँ श्रेणी में, उष्म श्रेणी में, यानी अपगत का काल है वो उसका अंतर है। उत्कृष्ट अंतर देखो, जैसे हमने पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल पर अर्थ, तो ये भी स्त्री वेद का भी हो जाएगा, और नपुसक वेदिक वेद का सागरोपम शत पृथकत्व। हमने देखा ना पुरुष वेद में लगातार रहने का काल सौ सागर पृथकत्व, उसी में स्त्री वेद का भी इंक्लूड कर दो, ये सौ सागर पृथकत्व और सौ पल्ले पृथकत्व मिलकर भी सौ सागर पृथकत्व ही कहलाएगा। पृथकत्व में थोड़ा बढ़ गया, इतना ही। स्त्रीवेद का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देव और नारक आयुओं की उदीर्णा का अंतर, जघन्य से अंतर्मूर्त। देखो क्या कहना चाहते हैं, देवायु की उदीर्णा कब रुक गई, अंतिम आवली में, तो वापस अंतर्मूर्त में कैसे शुरू हुई, अंतर्मूर्त का भव करके वापस देव में चला गया। कोई भी कर सकता है, एक सातवें नरक का नारकी तीन इंच में जाता है, बाकी कोई भी नारकी के लिए सातवें नरक में जाने के लिए लिया था, सातवें नरक के दो भव के लिए बताया था, उसके दो तीन इंच के भव किए थे, क्योंकि सातवें से कोई मत्स्य में नहीं जाता है, तो पहले उसको संगी पंचेंद्रिय तीरेंज बनाया, फिर वो महामत्स्य नहीं मत्स्य बनाया, क्योंकि उसको सम्मूर्छन में वो भेजकर फिर वो वहाँ सातवें नरक में जाएगा, इसलिए वहाँ दो भव किए थे। हम देखो देखो यहाँ क्या कहते हैं, जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, यानी वो देव की या नरक की आयु ही नहीं मिली, उसके एक इंद्रिय में चला गया। तीर्यंच आयु का अंतर जघन्य से एक आवली, क्योंकि तीर्यंच में से तीर्यंच में गया, केवल अंतिम एक आवली रुक गया था, ख्याल में। और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण है। हमने देखा था तीर्यंच आयु का, तीर्यंच आयु बांधने का अंतर जो हमने देखा था सागरोपम शत पृथक्त्व होता है, अन्य तीन गति में रहने का काल। एक आवली ने तीर्यंच था, मरण के पहले उसके रुक गई और फिर तीर्यंच हुआ, तो तीर्यंच आयु की उदीरना चालू हो गए। देव और नारकी में वैसा नहीं ले सकते, हाँ उस अपेक्षा से मनुष्य में भी एक आवली हो जाएगा। तीर्यंच आयु का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है, यानी वो लगातार तीर्यंच में तो रह ही सकता है, पर समझो त्रस हो गया तो वो तीर्यंच तो हुआ था, भी तीर्यंच में से आया था, अब वो मनुष्य देव और नारकी होता रहा, तो सौ सागर पृथक्त्व तो देव नारकी और मनुष्य में ही रहा, तीर्यंच हुआ ही नहीं, बाद में नियम से तीर्यंच होगा ही होगा। तो आप इमेजिन करो, सौ सागर पृथक्त यानी 900 सागर ले लो ना, तो 900 सागर है और लगातार उसको देव मनुष्य और नारकी के भव करने हैं, तो बीच में मनुष्य के भव भी लगातार कर सकता है ना, और फिर देव का एकाध किया, फिर मनुष्य हुआ, फिर नारकी के किया, फिर मनुष्य हुआ, क्योंकि बीच में मनुष्य में होना ही है उसको, तो इन्हें कितने भव हो सकते हैं उसके, क्योंकि ऊपर के देव में बार बार नहीं जा सकता, बारंबार जाने के लिए उसके 10,000 और थोड़े ऐसी संख्या वर्षायुष वाले वो ज्यादा बार हो सकते हैं, असंख्यात तो नहीं हो गया, क्योंकि वो सागरों में लगातार ही जाने के नियम है उसके, हाँ सब जगह ऐसे, यानी पहले नरक में लगातार जाएगा तो 8 बार जा सकते, इस तरह से जो नियम है ना वो वहां पर भी लागू होते हैं। असंख्यात नहीं हो गया इसे, इतने तो नहीं हो गया।
यहाँ पे पहले का संख्या बाबा जी और पहले का संख्या बाबा जी, और ये तो 900
सागर है, परंतु ये जरूरी नहीं कि उसके इतने हैं, क्योंकि ऐसा कोई हम असंख्यात बार होते ऐसा कह नहीं सकते, अधिक होगी इतना तो कह सकते हैं ना। महाबन में क्या लिखा है? हाँ भाव के 100 सागर पृथक, तो वो आई थी बात, क्योंकि हमने उसमें ये बात देखी थी। अच्छा महाबंध भाग 3 में ने प्रकृति स्थिति स्थिति की बात है। यानी उसमें त्रस में आने पर पहला तिरंचायु बांधी और फिर तिरंचायु बांधी ही नहीं उस जीव ने, तो कितना अंतर पड़ेगा, उसकी बात वहां आई थी। वहां तो हमने ये बात देखी कि पुरुष वेद में रहते हुए, यानी अभी नारके की भी बात छोड़ दो, अब देव और मनुष्य की बात करे बंद करेगा, पुरुष वेद में रहने का उसका काल है 100 सागर पृथक, और उसमें तिरंचायु का भी अंतर 100 सागर पृथक, यानी 100 सागर पृथक में पुरुष वेदी रहा, पुरुष वेदी ने मनुष्य तिरंच और देव, और उसने तिरंचायु बांधी नहीं, तो 900 सागर तक केवल मनुष्य और देव की, अभी अभी नरक को भी निकाल दो। पुरुष वेद में रहते हुए तिरंचो का अंतर, हमने एक एक वेद में रहते हुए देखा था। ये महाबंध में वो बात आई थी, यानी पुरुष वेद में रहते हुए तिरंचायु का अंतर, वहां तो बंद की अपेक्षा, अपन बंद होगा तभी तो उदय होगा ना। हाँ वो सो तो हो सकता है केवल, पर हमें पुरुष वेद में भी घटित कर सकते हैं इस बात को। 100 सागर पृथक कथन दोनों के लिए, मात्र तिरंचायु के अंतर के लिए भी है। मुझे क्या कहना है, पुरुष वेद में घटित करते तो और हमें स्पेसिफिक मिल जाए ना। हाँ 100 सागर पृथक समझो, 900 सागर, अब आगे बढ़ते जरा। पुरुष वेद की बताएं ना, श्री नपुंसक वेद का भी बताएं, आयु की बात चल रही थी, तिरंचायु का हमने देखा, इसी प्रकार से मनुष्यायु के भी अंतर का कथन करना चाहिए, उसमें भी जघन्य अंतर आवली प्रमाण हो जाएगा, मनुष्य से मनुष्य में गया तो जघन्य अंतर आवली हो गया। विशेषित वो तिरंच में लेना है, तिरंच बना नहीं, अभी मनुष्यों के लिए असंख्यात पुद्गल परावर्तन लेना, क्योंकि वो एकेंद्री में चला गया, वो तिरंच ही रहा कायम, इस तरह लेना। मनुष्यों में उत्कृष्ट अंतर बड़ा होगा, तिरंचों में उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शत पृथक्त्व है, मनुष्यों के लिए उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जैसे देव और नारकी के लिए लिया वैसे, यानी मैक्सिमम काल तो ये तो तिरंच में ही रहेगा ना, अंतर पड़ेगा तो उसी में कम अंतर है, सबसे कम अंतर तिरंचों में है। अब आते हैं पेज नंबर 70, ये आयु की बात हो गई, देखो ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण हुआ, अंतराय हुआ, फिर मोनीय हुआ, वेदनीय भी हो गया, अभी नाम कर्म की बात, आयु भी हो गई, अब नाम गोत्र की बात है। ये तो होगा ना, लंबा चलेगा, थोड़ा लेते हैं, फिर दोबारा रिवीजन तो करेंगे ही हम। देखो चार गतियों का अर्थ होता है, वो तो उदय की बात है ना, यहाँ पर उदय उदीरणा की बात है, तो ये नाम कर्म के जो गति नाम कर्म है उसकी बात चल रही है। तो चार गतियों का उक्त अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त है, यानी जैसे देवगति का उदय उदीरणा चल रही थी, अंतिम समय तक उदीरणा होती है, अंतर्मूर्त का एक भाव करके वापस देव में जन्मा, ये उसका अर्थ है कि जघन्य अंतर। उत्कर्ष से वह तिर्यंच गति का सागरोपम शत पृथक्व, जैसे तिर्यंच आयु का लिया था वैसे यहाँ पर, परंतु जघन्य के लिए अंतर्मूर्त लिया, आयु के लिए जघन्य आवली लिया, और यहाँ अंतर्मूर्त लिया यानी संख्यात आवली लिया, क्योंकि क्षुद्र भव भी होगा वो भी अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त कहेंगे उसको भी हम। उत्कर्ष से तिर्यंच गति का सागरोपम शुतक, और शेष गतियों का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, यानी मनुष्य गति, देव गति और नर गति के लिए, जैसे उन आयुओं का था वैसे गति का भी है। औदारिक और वैक्रिय शरीरों का उदीर्णा अंतर जघन्य से एक समय है, वैसे ही मनुष्य ने विक्रिया की, हाँ फिर नहीं अभी मारो मत, फिर औदारिक में आया तो औदारिक की उदीरणा कर रहा था, फिर मरकर देव हुआ, मरकर देव फिर हुए, और औदारिक का अंतर दोनों को एक समय लेते हैं, पर उन्होंने विक्रिया करके एक समय मरेगा तो औदारिक का अंतर होगा, और मूल शरीर में प्रवेश करके एक समय मरेगा तो औदारिक वैक्रिय का अंतर होगा, यानी विक्रिया कर रहा था मूल शरीर में आया तो औदारिक की उदीरणा कर रहा था, मरकर देव हुआ नारकी हुआ तो वैक्रिय की उदीरणा करने लगा, हाँ उल्टा औदारिक। उत्कर्ष से वह औदारिक शरीर का अंतर्मूल से अधिक 33 सागरोपम, यानी विक्रिया शुरू की, अंतर्मूल तक विक्रिया करके अंतिम समय में मरा, औदारिक में आया ही नहीं, यानी औदारिक का अंतर ही शुरू हुआ, और फिर 33 सागर के देव में उत्पन्न हुआ, यानी अंतर्मूल विक्रिया शुरू कर दी, विक्रिया शुरू करते ही औदारिक का अंतर हो गया, और विक्रिया के अंतिम समय में मरा, तो 33 सागर में और अंतर्मूर्त बढ़ा देना, वहां से वापस मनुष्य में आएगा तो औदारिक चालू हो जाएगा। अंतर्मूर्त से अधिक जो 33 सागर है तो अंतर्मूर्त कहाँ से बढ़ाया, विक्रिया का अंतर्मूर्त, हाँ विक्रिया का अंतर्मूर्त। और वैक्रियक शरीर का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी देव या नारकी जो है मनुष्य तिर्यंचों में पहले भटका और फिर कालांतर से एक इंद्रिय में जाए गया, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, उसी में सब ये काल इंक्लूड करके कथन होता है, अनंत काल है, फिर ना देव हुआ ना नारकी हुआ, नहीं समझे, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, विक्रिया नहीं किया ऐसा ही जीव लेना। वहाँ पर विक्रिया नहीं किया ऐसा भी ले सकते
हैं,
बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनके उसकी देखो देखो एक इंद्रिय में गया ना, वो तो एक इंद्रिय में गया तो पहले अन्य पर्याय में भटका और उसमें उसकी उद्वेलना हो गई, और बाद में अग्निवायु हो सकता है, जिसने वैक्रिक शरीर अंगोपांग की उद्वेलना कर दी है उद्वेलना तो बाकी एक इंद्रिय भी करते हैं ना, यानी वो टोटल मिलकर असंख्यात पुद्गल परावर्तन। आहारक शरीर का जगन्यंतर अंतर्मुख, हमने देखा है ना, आहारक शरीर बनाया किसी ने, मूल शरीर में आके दोबारा आहारक बनाया, एक अंतर्मुख में बना सकता है। और उत्कृष्ट उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि वो मिथ्यात्व में गया, उद्वेलना हो गई, फिर जब वो संयमी हुआ, फिर बांधा और फिर उसकी उद्वेलना कर। विशेष इतना है कि अरे एक एक रह गया, अन्यतर संस्थान का जगन्यंतर एक समय, हमने देखा ना विक्रिया करके अन्य संस्थान बनाया और फिर वापस मर गया तो उसी संस्थान में जन्मा इस स्थान। और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक हुंडक संस्थान में रहा तो अन्य संस्थानों का अंतर हो गया। विशेष इतना है हुंडक संस्थान का उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है। पहले ये बात हमने देखी थी, काल में लगा लिया था, साधिक 163 यानी 266 सागर और 31 सागर लिया था, यानी समचतुरस्र में रहने का काल लिया था उसमें। अन्य पांचों ले सकते, उसी में इंक्लूड कर देना, उसी में मनुष्य यानी कर्म भूमि के मनुष्य तीन चौंके भव भी उसी में इंक्लूड कर दो तो भी वही काल कहेंगे। वो साधिक में उसको ले लेना, देखो देखो हुंडक संस्थान का अंतर कब होगा, जब हुंडक बिना अन्य संस्थानों में रहा तो अन्य संस्थानों में यानी कर्म भूमि के मनुष्य तीरेंचों में बीच के चार संस्थान होते हैं, और जो सम्यक दर्शन होने के बाद मनुष्य देव के भव करेगा तो लगातार सम्य चतुरस्र रहेगा उसका, तो इसलिए वो 266 सागर और 31 सागर हमने देखे थे, तो 163 सागर वो होते हैं। और फिर बाद में वो मनुष्य में आया परंतु अन्य संस्थान वाला हो गया, चार में से बीच वाले चार में से उसमें कुछ काल तक रहा और बाद में एक इंद्रिय में गया तो साधिक 163 सागर हो गए। एक इंद्रिय जाति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त यानी अन्य इंद्रिय वाला होगा, एक शुद्र भव करके वापस एक इंद्रिय जाति में गया तो उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरोपम प्रमाणे, यानी वो त्रस पर्याय का काल, त्रस का उत्कृष्ट काल, त्रस में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेंगे तो पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस 2000 सागर होता है। शेष जातियों का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त यानी अन्य जाति वाले अन्य जाति में गए और वापस फिर आए एक क्षुद्र भव करके, क्योंकि क्षुद्र भव किसी भी जाति वाले के होता है, वो जघन्य अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी एक इंद्रिय जाति में चला गया। तीन अंगोपांग नाम कर्मों के जघन्य व उत्कृष्ट अंतर का कथन अपने अपने शरीरों के समान करना चाहिए। विशेष इतना है कि औदारिक अंगोपांग के अंतर की प्ररूपना वैक्रियक शरीर के समान है। एक इंद्रिय में चला गया ना, अंगोपांग का उदय ही नहीं है वहां पर, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हो जाएगा। हाँ जगन्य से एक समय इसलिए होगा,
एक समय हो
विक्रिया वाला अंगो
नहीं तो वो कार्बन का योग में एक समय के लिए भी तो वहां पर उदय ही
फिर उदय हो गया बराबर। एक समय एक मोड़ वाला ले सकते, एक मोड़ वाला विग्रह गति में उदय नहीं है, एक मोड़ वाला लेना ना, पहले समय में पर्याप्ति में नहीं, मिश्र शरीर में, यानी पहला समय शरीर धारण करने का पहला समय, एक मोड़ वाला, एक मोड़ के लिए अंतर पड़ा, एक मोड में हाँ, एक मोड में उदय नहीं है, एक समय के लिए उदय नहीं, या विक्रिया की और फिर वो अवधारिक मनुष्य तिरंच में ही जन्मा, ये भी ले सकते।
तो एक शरीर के एक शरीर के लिए हम लोग को वो विक्रिया लेना पड़ेगा।
हाँ, पांच शरीर बंधनों और पांच संघातों के अंतर की प्ररूपना पांच शरीरों के समान है। बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म का शरीर के समान ही बात होती है। छह सहननों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। विग्रह गति में हो जाएगा। एक इंद्रिय में उसका उदय ही नहीं होता ना, सहनन होता ही नहीं उनके, हाँ, इसलिए असंख्यात पुद्गल। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो हुडो। अश्विन।